फिर आगे आयत नंबर 120 से 123 में टॉपिक क्या है कि जब दिल दुखी हो तो अल्लाह से दुआ मांग लें। अभी बात भी हुई ना कि ज़िंदगी में हमें दूसरों की बातें सुनना पड़ती हैं, जब भी कभी ऐसा हो। अल्लाह अपने नबी को भी कह रहे हैं, अब ये सूरत पूरी हो रही है और उसका एंड है बिल्कुल, क्या नबी आप इन सारे किस्सों को जब सुन रहे हैं ना, हमें पता है कि आपको भी सदमा है, आपकी कौम आपको भी नहीं मान रही, तो आपको वकुल्ल नकुस्सु अलैका मिन अंबाए रुसुल, हम आपको अंबिया कराम की ये कहानियाँ या उनके किस्से क्यों सुना रहे हैं, ताकि मानुसब भी तो भी फुआदक, आपका दिल बन जाए, दिल के जमाव के लिए, और आपके ऐसे हक आ गया, ये नसीहत है और ये जिक्रा है। क्या पता चला कि आज आपको भी जब कोई अल्लाह के रास्ते में सताए, तकलीफ़ दे, तो आप भी उस वक्त अल्लाह से एक तो उनकी हिदायत की दुआ करें और अपने लिए इस्तकामत की दुआ करें। इस खूबसूरत पैगाम पे सूरत हूद पूरी होती है। आखिरी जुमला सूरत हूद के लिए नोट कीजिए कि अंबिया कराम के नामों पे कुरान पाक में जो सूरतें हैं उसमें एक हम पढ़ चुके यूनुस और दूसरी अब पूरी हुई हूद, और अगली सूरत शुरू हो रही है यूसुफ। यानी ये कुरान का वो खूबसूरत मुकाम है, ये जुमला नोट कर लीजिएगा कि मुस्तकिल तीन सूरतें और आगे भी आएंगी तो वो भी बता दूंगी। फिलहाल पहले यूनुस, फिर हूद और अब सूरत यूसुफ है, और ये खूबसूरत नाम है। अगर आप इन नामों को जहन में रखें तो बच्चों के नाम रखने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत नाम है। अब थोड़ा सा सूरत यूसुफ का खुलासा करते हैं क्योंकि थोड़ी सी आयात हैं, बाकी इंशाल्लाह इसकी अगले पारे में जब आएंगी तो हम बात करेंगे। तो सूरत यूसुफ की पहली 52 आयात इस पारे में हम पढ़ेंगे। पहली तीन आयात में कुरान करीम एक आम फहम किताब है, इसका तस्करा है, यानी ये कोई बहुत स्कॉलराना बुक नहीं है, ये कोई आलिमाना किताब नहीं है, अनपढ़ से अनपढ़ शख्स भी इसको मान सकता है। ख्वाहिश तो कीजिए और दुआ तो कीजिए कि अल्लाह इस किताब को इन डेप्थ पढ़ने की भी तौफीक दे, जैसे इस वक्त हम खुलासा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आयत 4 से 6 में हज़रत यूसुफ़ का एक खूबसूरत सा ख्वाब है। इस काल यूसुफ ली अभी से शुरू बात होती है। हज़रत यूसुफ़ कौन थे? करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। इनका सिलसिला नसब ऊपर से अंबिया कराम तक जाता था। अल्लाह ने इनको अनयूजल खूबियाँ दी थी। बहुत सारी खूबियों में से एक ख्वाबों की ताबीर थी। अल्लाह ने इनको सच्चा ख्वाब दिखाया जो वो अपने बाप से शेयर कर रहे हैं। तो ख्वाबों की थोड़ी सी बात करते हैं, मुख्तलिफ अकसाम में। एक किस्म के होती है अच्छे ख्वाब, ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होते हैं। अगर आपको कोई अच्छा ख्वाब नज़र आ जाए तो शुक्र अदा कीजिए और खुश हों, आम लोगों से तस्करा ना करें, क्योंकि ख्वाब के बारे में जो कोई कुछ कह देगा ना, उम्मीद होती है कि वो हो जाएगा। हाँ, बहुत भी दिल करे तो किसी आलिम से या जो खैर ख्वाह शख्स है उससे बयान कीजिए, हासिल से ना समझ, बच्चे से, बड़े से नहीं। उसने आगे से गलत कह दिया तो कहीं वो हो ना जाए, हदीस में इसके इशारे मिलते हैं। दूसरी किस्म होती है बुरा ख्वाब, ये शैतान की तरफ से होता है, एक इंसान को गमगीन करने के लिए होता है। ऐसे ख्वाब का कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर बुरा ख्वाब दिख जाए तो क्या करें? इसके शर से पनाह मांगे, दुआ है बस सिंपल, अल्लाह ताला मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि इस ख्वाब की बुराई मुझसे दूर कर दे। फिर किस्सा यूसुफ में हसद की कबाहत है, आयत 7 से 17। अब देखिए कि बहन भाइयों में सिबलिंग जेलसी होती है, आपके घरों में भी होगा, अपने बच्चों में या पोते नवासों में। देखिए, जो ही दूसरा बच्चा आता है तो पहला बच्चा क्रैंकी हो जाता है, छोटे बच्चे को मारता है, क्यों भला? कि माँ कल तक तो मेरे साथ लगी होती थी और अब इसके साथ लग गई। तो लकत का नफ़ी यूसुफ व इख्वती ही में पूरे किस्से का जो मेन थीम है वो हसद है। इससे बचना, इंशाल्लाह सूरत पूरी होगी तो वहाँ एंड पे हम थोड़ी इस पे बात करेंगे। और वो पूरा किस्सा आप सबने सुना हुआ है कि कैसे भाई ले गए और उनको फिर कुएं में फेंक दिया और उनकी कमीज़ को झूठा खून लगा कर ले आए। तो आयत 18 का टॉपिक लिख लीजिए, झूठ के पाँव नहीं होते, वजह वाला कमीज ही बिदमिन कज़िब। यानी भाई अपने आप को सच्चा साबित करने में ये भूल गए कि कमीज़ पे खून तो लगाया लेकिन फाड़ी नहीं। हज़रत याकूब ने कमीज़ देखी तो समझ गए ये कौन सा महज़्ज़ब भेड़िया था कि जिसने यूसुफ को काट फाड़ भी दिया लेकिन कमीज़ को बाल भी नहीं बना। तो पता चला कि झूठ कहीं ना कहीं से खुल जाता है। फिर आयत 19 से 21 में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, कैसे बाप की मोहब्बत से निकले, भाइयों के हसद की वजह से कुएं में डाल दिए गए और अब वजह से यार तुफार सलू वारी दहूँ फदला दलवा, वहाँ कुएं से अब निकाले जा रहे हैं, एक काफले के थ्रू, और वहाँ से जब उनको निकाला और उनको एक बड़ी कीमती चीज़ समझ के छुपा दिया, और इसके बाद फिर वो कैसे अजीज़ मिस्र के घर में गया और उसने अपनी बीवी को कहा कि इसको इज्जत से रखना, हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। असल में ये सारा अल्लाह का प्लान था। व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्थ, ये हैं अल्लाह के प्लान्स। अल्लाह ताला मुल्क शाम के एक देहात कनान नाम के गांव में छोटे से निकाल कर एक शख्स को, एक बच्चे को, उस दौर की सुपर पावर मिस्र में ला रहा है। ऐसे है जैसे आज कोई बच्चा पाकिस्तान के किसी गांव से अगवा हो और अमेरिका की समझे कि मिनेसोटा में पहुंच जाए या वाशिंगटन डीसी में पहुंच जाए। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम से काम लेना चाह रहे थे, उसके लिए आपको ये सारी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव दिखा दिए। और मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि हमने सूरज यूसुफ ना सिर्फ के हर साल के दौरे कुरान, हर साल के सबीलुल जन्ना, तफसीर के सेट हो, नूरुल कुरान का एक सेट है, कुछ 10-12 तो बड़े बड़े तफसीर के सेट्स हैं, उसके अलावा अलग से भी की है। और जो मोस्ट रिसेंट मैंने की थी, ये एक साल से ज़्यादा हो गया, हमने एक स्कूल में बच्चों के साथ की थी, यानी यंग बच्चियाँ थी स्कूल में, और 8 दिन का कोर्स था। आप वो ज़रूर सुने, वेबसाइट पे दोनों मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो आपके टीनेजर बच्चे हैं, आजकल हम टीनेजर कोर्सेज में उसको यूज़ भी करते हैं, और उससे पहले मैंने लाहौर से बच्चों की तरबियत के एंगल से इसको किया था। तो ये सूरत पढ़ने वाली है, लाइफ चेंजिंग सूरत। अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे कि हम कुछ वक्त इसके लिए निकालें। इसके बाद आयत 22 से 24 में टॉपिक है अल्लाह अपने बंदों के किरदार की हिफाजत करता है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अब परदेस में है, सुपर पावर मुल्क है, माँ बाप में कोई है नहीं, हर वो चीज़ थी जिसमें बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब देखिए कि अमूमन बच्चे बिगड़ जाते हैं जब अगवा होते हैं, और फिर कभी चोर डाकू बन के मिलते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा बिछड़ा और नबी बन के मिला। इससे पता चलता है कि अच्छी तरबियत और माँ बाप की दुआएं बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत करते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे उस औरत के यूसुफ अलैहिस्सलाम को टेम्प्ट करने और उनको वरगलाने का तذکرہ है। आयत 25 से 29 में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही है, कैसे उस औरत ने यूसुफ को टेम्प्ट किया और बाद में जब शौहर को देखा तो बिल्कुल ही बात बदल गई। और हकीकत है कि लास्ट पे कायम मोहब्बतें ऐसी ही बेकार होती हैं। और इस तरीके से फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल एक बेगुनाह शख्स होते हुए भी उस वक़्त कुछ कर नहीं सके। फिर इसमें अगली आयतें 30 से 32 में उस औरत की दीदा दलेरी देखिए कि अपनी सहेलियों को बुलाती है, तो बेगमाते मिस्र का मकरो फरेब किटी पार्टी। वो फारिग औरतें जिनका काम ही सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के सज संवर के कभी बाजारों में जाना और पार्टीज और क्लब्स में जाना, ऐसी एक महफिल थी। उन्होंने भी हज़रत यूसुफ के साथ कुछ ऐसी ही अटेम्प्ट की, लेकिन ईमान वाला अपना ईमान बचाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने को पसंद किया और ऐसी खूबसूरत दिल फेंक औरतों से अपने आप को दूर किया। आयत 33 से 35 में ये पढ़े, दुआ कीजिए अल्लाह हमारे जवान बच्चों की निगाहें पाक कर दें, हमारे मर्दों की निगाहें पाक होंगी तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में हमारे बच्चे भी अपने ईमान को बचा लेंगे। और इस तरह बिल आखिर क्या कहा, रब सिजन अहब इलैया मिम्मा यदूननी इलैह। देखिए ग्लैमर माशरे का रंग, आज लोग इस पे मरते हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा अल्लाह ताला मुझे जेल में डाल दे, मुझे वो जेल अच्छी है ऐसे खूबसूरत माहौल से जहाँ खुशबुओं में लिपटी हुई और मेकअप ज़दा ख़वातीन मेरी तरफ गलत नज़रें डालें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बेकार दौर के जेल में आ गए, पहले कुएं में थे अब असल जेल में आ गए, लेकिन खूबी हर जगह खुल जाती है। आयत 36 का टॉपिक, हज़रत यूसुफ जेल में थे वहाँ ही उनकी खूबी फैल गई, क्योंकि जो कैदी हैं वो क्या कह रहे हैं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। आपके अंदर अगर खूबी, आपकी बेटी में खूबी है, फैल जाएगी। और मैं अक्सर कहती हूँ कि बेटियों की शादी कभी ना करें जब तक उनको पूरी सूरत यूसुफ ना पढ़ा लें। शादी के बाद की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हम सब ख़वातीन को मालूम है। कुरान के साथ अपनी बच्चियों को रुख्सत कीजिए, पहले से सीख चुकी होंगी तो वहाँ जाकर माँ और नानी को याद नहीं करेंगी। फिर इसके बाद उसमें ख्वाब का एक फिर तذکرہ आता है जो उस शख्स ने देखा था। हज़रत यूसुफ ने खूबसूरत तरीके से तबलीग की। आयत 37 से 40 से ये पता चलता है कि जब उस शख्स को हज़रत यूसुफ की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत यूसुफ ने भी उसको फिर अल्लाह की बात की और बड़े प्यारे तरीके से तबलीग की। इससे पता चलता है कि मोमिन की हर मुमकिन कोशिश होती है कि हर मौका तबलीग का मौका बने। आपको इसमें चंद असूल भी मिलेंगे कि तबलीग किन असूलों पर करनी चाहिए। पहला पहली बात है कि दूसरों के दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत का एहसास पैदा कीजिए। मेरी नज़र में आपसे सुनकर कोई क्या बने, यानी अगर आपने आज का पारा सुना तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं? मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आपके दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाए, आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगें। इसी तरह सबसे पहले अपने अखलाक, ईमान और इबादत पे तवज्जो देनी चाहिए। कभी कभी दीन की बात बताते हुए हमारा अखलाक बिगड़ने लगता है। बच्चों को तो हम चीख के ही बात करते हैं, गुस्से में ही बात करेंगे, नमाज के लफ्ज़ के साथ ही माँ की चीखों पुकार है। और भी वजूहत है, लेकिन ये भी एक वजह होती है जो कभी कभी बच्चों को फिर जवान होने के बाद नमाजों से दूर कर देती है। फिर तीसरी बात, पहले दूसरे का इत्माद हासिल कीजिए, फिर गलतियों की तरफ तवज्जो दें। देखिए, जिस बंदे के बीच में आपका कोई बॉन्ड ही नहीं बना, वो आपकी बात क्यों सुने? तो दाई और मधु के बीच में एक बॉन्ड होता है, चाहे वो माँ बेटी हो या बीवी या शौहर दो हों। फिर इस तरह इब्तदान भलाई का हुक्म देने से हो, फिर बुराई से रोके, क्योंकि बुराई से रोकने में चिढ़ पैदा होती है। हाँ, अच्छे कामों के करने का मौका दीजिए। फिर पांचवा उसूल क्या है कि खैर ख्वाही से दूसरों का दिल जीतिए, फिर अमल के लिए उभारिए। एक बच्ची पहले ससुराल में आकर खिदमत तो करे, प्यार तो करे, नंदों को अपना समझे, अपनी देवरों के साथ भाइयों वाला मामला रखे, अल्लाह की दीवी पाबंदियों में रहते हुए उनकी खिदमत करे, फिर वो जो बात कहेगी लोग मान जाएंगे। फिर इसी तरह सवाल करें और सोचने का मौका दें, किसी पर हुक्म नहीं चलाना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हज़रत यूसुफ ने उनके साथ कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद फिर उनको सोचने का मौका दिया था। फिर इसी तरह एक और असूल लिख लें कि पिछली कौमों के वाक़यात गलत और सही की पहचान करवाएं। यानी हम अपने बच्चों को नानियों की कहानियाँ सुना सकते हैं, देखो बेटा तुम्हारी नानी ने कितना सब्र किया, देखो दादी भी तो रहीं, इस तरह की बातें, जिससे उनका दिल खुल जाए। फिर आगे आठवां असूल क्या है कि दाइये दीन को पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं जो पेश कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा हक है। अल्लाह से जोड़िए, अल्लाह से जोड़ने वालों से खुद ब खुद लोग भी जुड़ने लगते हैं। फिर नौवां असूल क्या है कि अजियतों को नज़रअंदाज कीजिए, एराज़ का रवैया अख्तियार करें। देखिए, साथ रहते हुए हम ख़वातीन हैं, हमने कौन सा कुर्सी में सजा के तबलीग करनी है? आम तौर पर घरों में अगर कोई 19-20 हो जाती है तो जस्ट ओवरलुक, और सिर्फ इसलिए भी लोगों के साथ अच्छे रहें कि मैं एक दीन की दाइयाँ हूँ, लोग मेरे अमल से कहीं दीन को बुरा भला ना कहें। और फिर आखिरी बात जो इसमें इस लेवल की है, कौलो फेल के तजाद से बचिए। आप जो दूसरों को कहते हैं, लोगों को वो आपके अंदर भी दिखना चाहिए। बहरहाल, अब यहाँ किस्सा एक मोड़ पे आ रहा है जहाँ पारा भी पूरा होगा, और वो क्या है कि कैदियों के ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ बताते हैं आयत 41 से 42 में, और बिल्कुल जो उन्होंने तबीर बताई वैसा ही हुआ कि जिसके बारे में उन्होंने कहा कि तुम बच जाओगे, वो बच गया, और जिसके बारे में कहा इसको सूली चढ़ाई जाएगी, वो सूली पे चढ़ा दिया गया। और आयत 43 से 49 में मुहसिन का रवैया, जो शख्स बच गया था, इन्होंने जाते हुए कह भी दिया था कि मेरी बात कर देना उधर, लेकिन वो शख्स भूल गया और फिर वापस अपने काम पे चला गया। जब ख्वाब उसी बादशाह को अल्लाह ने एक और दिखाया, और वो जब उसकी ताफीर पूछने आया तो हज़रत यूसुफ ने कोई ताना नहीं दिया कि मैंने कहा था मेरा जिक्र करना है वो करना। इससे क्या पता चलता है कि मोहसिन वन साइडेडली लोगों के साथ नेकी करते हैं। और आखिरी आयात 50 से 52 में हज़रत यूसुफ की बेगुनाही साबित हो रही है, जिसका तذکرہ अगले पारे में 53 आयत से जुड़ेगा। यानी वही ख़वातीन जो पहले हज़रत यूसुफ को इल्ज़ाम दे रही थी, वही अज़ीज़े मिस्र की बीवी जिसने कहा था कि ये तुम्हारी बीवी पे बुरी नज़र रखता है, आज सारी महफिल के बीच में कह रही है कि अल आना हसल हक़ु अनरावतु अन नफ़सी, आज तो हक खुल गए, मैं ही थी जो इसको फिसलाती थी अपने नफ़ से, वइन्नहु लमिनस सादिकीन, और ये सच्चों में से है। तो क्या पता चला, अगर आप सच में हैं, आप बेगुनाह, ठंडा दूध पी लें, बेफिक्र हो जाए, रिलैक्स हो जाए, अल्लाह आपकी बेगुनाही वैसे साबित करेगा जैसे उसने यूसुफ की और मरियम अलैहिस्सलाम की साबित की और हज़रत आयशा सिद्दीका की साबित की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर वासनु जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।